सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के तपोभावना की, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, शक्तितस तपो भावना के माध्यम से भी किया जा सकता है। शक्ति के अनुसार तप करना, यह भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बन सकता है। दर्शन विशुद्धि को छोड़कर यानी उसके साथ किसी 15 में से एक भावना को जोड़ेंगे और उसका आचरण हम करेंगे तो 15 में से कोई एक भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बन सकता है। शक्ति के अनुसार जैसे त्याग करना चाहिए, शक्ति के अनुसार ही हमको तप भी अंगीकार करना चाहिए। विदाउट तपस्या कर्मों की निर्जरा नहीं होती, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। ऐसी आवाज आ रही है, शक्ति के अनुसार जैसे त्याग किया जाता है, शक्ति के अनुसार वैसे ही तप भी किया जाता है। तपस्या के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं। तप से पूर्व त्याग करना पड़ता है, त्याग पूर्वक तपस्या करेंगे तो वह तपस्या मोक्ष मार्ग में या तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के क्षेत्र में सफल होता है। तप कैसा हो? त्याग पूर्वक हो। त्याग किसका त्याग? पर वस्तुओं का त्याग करके आप उसको त्याग समझकर चल पड़ते हैं, ये सही है कि हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं वह वे इच्छाएं ग्रहण बुद्धि पूर्वक होती हैं। हमें ग्रहण करना है इसलिए इच्छा होती है। इच्छा पूर्वक हम ग्रहण भी करते हैं और इच्छाओं का निरोध करके हम त्याग भी करते हैं। इच्छा का निरोध हुए बिना त्याग भी नहीं हो सकता और इच्छा का निरोध हुए बिना तप भी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से यदि देखें तो इच्छा का निरोध त्याग में भी है और तप में भी है। त्याग और तप में दोनों में इच्छा है, त्याग और तप में दोनों में इच्छा होती है। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध करना तप कहलाता है। इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं पर कंट्रोल करना, इच्छाओं को अपने अंडर में रखना, वश में रखना, ये तपोभावना है। इस तपोभावना को आगे बढ़ाने के लिए इसके बेस में त्याग भी चाहिए पड़ता है। त्याग पूर्वक जहाँ तपस्या प्रारंभ होती है वहाँ पर भावनाओं में उत्कृष्टता आती है। त्याग त्याग है, तप तप है। त्याग में विसर्जन होता है, तप में तपना होता है। विसर्जन करने के पश्चात भी, त्याग करने के पश्चात भी विसर्जन करने के पश्चात भी और त्याग करने के पश्चात भी यदि हम तपते नहीं, यदि हम गर्म नहीं हो पाते, अपनी आत्मा को तपा नहीं पाते, तो त्याग सफल नहीं हो सकता। त्याग की सफलता तपस्या पर होती है और तप पूर्वक ही हर किसी को मोक्ष की उपलब्धि होती है। तप पूर्वक ही शक नहीं कर पा रहे हैं, आवाज कैसा है? त्याग पूर्वक तपस्या करना आवश्यक होता है। त्याग पूर्वक तपस्या करने पर तपस्या के माध्यम से समस्त कर्मों का नाश होता है, आत्मा का संशोधन होता है, आत्मा में परिशुद्धि आती है, आत्मा के भीतर शुद्धिकरण प्राप्त होने के बाद ही एक आत्मा को परमात्मा बनना संभव है। आत्मा को परमात्मा बनाने के इस साधना में यदि हम इस साधना के दौरान तीर्थंकर प्रकृति के बंद की भावना को भाते हैं तो यह भावना हमको और महान बना देती है, हमको और उच्च बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। श्रेष्ठतम सीढ़ियों को चढ़ा करके परमात्मा के उस अवस्था को प्राप्त करा देती है जिस अवस्था में हम अपने आप को तीर्थंकर बनने का अनुभव कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद त्याग से भी हो सकता है तो तप से भी हो सकता है। ये दोनों भावनाएं हैं, पवित्र भावनाएं, इनके माध्यम से इसकी भूमिका में, इसके बेस में विशुद्धि आवश्यक होती है। प्रत्येक कार्य विशुद्धि के माध्यम से ही संपन्न होना आवश्यक होता है। विशुद्धि होती है, विशुद्धि के बिना कोई भी कार्य सक्षस नहीं हो सकता है। हम यदि सक्षम हैं तो हर किसी कार्य को सक्षस कर सकते हैं। इच्छा निरोधो तपः। इच्छा का निरोध करना तप है। इच्छाओं को निरोध किए बिना हम यदि तप के रास्ते पर निकल जाते हैं तो तपस्या कितना भी करें वह तपस्या निरर्थक हो जाती है। हर किसी कार्य को, धार्मिक अनुष्ठान को इच्छा का निरोध करके करने की पद्धति को यदि हम अनुसरण करते हैं तो यह त्याग, तपस्या, संयम, पूजन, दान इत्यादि अनेकों जो हमारे जीवन के हर चर्या में अनुष्ठान होता है वह अनुष्ठान पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है। मूल में एक ही बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? ये ध्यान में रखना चाहिए, इच्छा निरोधो तपः। इच्छा निरोध करने पर ही तप होता है। जैसा तप इच्छा निरोध करने से होता है वैसा ही त्याग भी इच्छा के निरोध से ही होता है। वैसे ही संयम भी इच्छा निरोध पूर्वक ही होता है। सम्यक दर्शन आदि रत्नों को धारण करते समय भी इच्छा का निरोध ही हमें करना पड़ता है। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध करना तप है। संयम और त्याग ये दोनों जिसके जीवन में आ चुके हैं, संयम को और त्याग को सफल बनाने के लिए तपस्या भी करनी होगी, तप की भावना भी भानी पड़ेगी। तप की भावना भाना प्रारंभ कर देते हैं तो कर्मों का संशोधन होकर आत्मा परिशुद्ध होता है। सागर तपता है, समुद्र तपता है, तपने के कारण से ही हम लोगों के लिए यहाँ पानी बरसता है। सागर अगर न तपे तो यहाँ पानी बरस नहीं सकता। बहुत तपता है सागर, जब पानी तप करके बाष्पित बन करके ऊपर उड़ने लगता है। आकाश मार्ग से वे ही बादल विहार करते 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 यहाँ आ जाते हैं, बरसते हैं, बरसने लगते हैं। सागर अगर ज़्यादा ही तप गया, आकाश में बादल ज़्यादा ही उठ गए तो हवा के झोंके से जिधर हवा बहती है, हवा के माध्यम से वे गमन करते करते आकाश मार्ग से किसी न किसी एक प्रदेश में पहुंच जाते हैं और वो बरसने लगते हैं। बादल बरसने योग्य होने के लिए उनके लिए एक वातावरण निर्मित होता है। वातावरण निर्मित होने के पश्चात ही बादल पानी बन करके धरती पर बरसते हैं और धरती को हरा भरा करने में, कराने में निमित्त बनते हैं। वैसा ही हमारे लिए भी करना पड़ेगा। आपने संयम धारण किया, आपने सम्यक्त्व धारण किया, आपने त्याग भी धारण किया। सम्यक तो संयम, त्याग इत्यादि के माध्यम से काम नहीं चलता। तप को भी अंगीकार करना पड़ेगा, अर्थात आत्मा को तपाना पड़ेगा। कैसे तपाया जाए, आत्मा को कैसे तपाना? तो तपने के लिए बारह रास्ते भगवान ने बताया है, बारह प्रकार के तपों के मार्ग हैं। इस मार्ग से गुजर करके हम आत्मा को तपा सकते हैं। बारह प्रकार के तपों में छह तो अंतरंग तप हैं और छह बहिरंग तप हैं। बहिरंग तप छह प्रकार के कौन कौन से? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति प्रतिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश इत्यादि। ये जो छह प्रकार के तप हैं ये बहिरंग तप माने जाते हैं। आप लोग उपवास या एकासन के साथ इस पूजा अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? उपवास से भी कर रहे हैं और एकासन से भी। जिसके पास जो शक्ति है शक्ति के अनुसार त्याग कर रहा है, उपवास आदि धारण कर रहा है, विशुद्धि पूर्वक ये पूजा अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। ये जो बारह प्रकार के तप हैं उसमें सर्वप्रथम नंबर आता है अनशन। अनशन यानी अशन यानी आहार, चतुर्विध आहार, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। चार प्रकार का आहार होता है। चार प्रकार के आहार में से किसी एक भी प्रकार का आहार स्वीकार नहीं करना ये अनशन कहलाता है। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि अनशन का अर्थ जलोपवास, जल भी ले लेते हैं और ऊपर से उपवास उसके लिए नाम दे देते हैं, जलोपवास हम कर रहे हैं। लेकिन जल अगर ले रहे हैं तो वो उपवास की कोटि में नहीं आता है। उपवास में अनशन होता है और अशन चार प्रकार का होता है। जो पिया जाता है पीने के योग्य सामग्री होती है, ऐसे जल पेय पदार्थ वगैरह सभी के सभी ये आहार की कोटि में ही आते हैं। जल भी पी लो तो भी आहार करने के समान है, शरबत भी पी लो, दूध पी लो, फलों का रस पी लो, ये पेय पदार्थ हैं। पेय पदार्थ को आप किसी भी प्रकार से स्वीकार करते हैं, कितना भी स्वीकार करते हैं उतने प्रमाण में आप स्वीकार करके ये तप तो कर रहे हैं, लेकिन पेय पदार्थ के ग्रहण करने में भी अनशन तप नहीं होता, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। इसलिए जलोपवास कहना और उसको उपवास समझना ये बराबर नहीं है। जल को स्वीकार करते हुए, जल को ग्रहण करते हुए उपवास करेंगे तो उपवास नहीं बल्कि उसको द्वितीय तप, ऊनोदर तप। दूसरा कौन सा? बहिरंग तप में ऊनोदर तप कहा जाएगा। द्वितीय तप ऊनोदर तप है। जल लेंगे तो हम ऊनोदर कर रहे हैं, उपवास नहीं कर रहे हैं। इसलिए जलोपवास शब्द ठीक नहीं। जल ले लिया और फिर भी उपवास मान लिया, जलोपवास कह दिया, ये जलोपवास कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह ऊनोदर तप की कोटि में आया। ऊनोदर का अर्थ है चतुर्विध आहार में से किसी भी एक प्रकार के आहार को भी आपने एक ग्रास भी ग्रहण कर लिया, एक अंजुली जल भी पी लिया तो ऊनोदर तप हुआ, दो अंजुली पी लिया तो भी ऊनोदर तप हुआ, ऊनोदर का मतलब ऊन उदर, कम पेट भोजन करना, चाहे उस भोजन को जल से कर लो, चाहे उस भोजन को आहार के रूप में कर लो, खाद्य पदार्थों से कर लो, स्वाद्य पदार्थों से कर लो, किसी भी पदार्थ से कर लो, वह ऊनोदर की कोटि में आता है। ये ऊनोदर ही कहलाएगा। तो हम जो तप करते हैं, यह तप किस प्रकार का होना चाहिए? तो तप जो है शक्ति के अनुसार तो होना ही चाहिए। हम जिसको अंगीकार करते हैं वह तप ही अपने जीवन में हो सकता है। हम ऊनोदर करेंगे तो ऊनोदर तप कहलाएगा, चाहे उसमें जल ग्रहण कर लें, चाहे खाद्य पदार्थ ग्रहण कर लें, कोई और किसी पदार्थ को ग्रहण कर लें, वह ऊनोदर के कोटि में आता है। ऊनोदर तप है ये। ये ऊनोदर तप के उपरांत एक तप और आता है, अनशन ऊनोदर वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब कोई नियम लेकर के भोजन ग्रहण करना, वह नियम अगर नहीं बनता है तो नहीं करेंगे और बनता है तो भोजन ग्रहण करेंगे। अपने इच्छा पर निर्भर करता है, अपने अपने अंतराय कर्म के क्षायोपशम पर यह निर्धारित होता है। अंतराय कर्म का क्षायोपशम हो तो आहार का योग बनेगा, और अंतराय कर्म का क्षयोपशम न हो तो आहार का योग नहीं बनेगा। इस प्रकार हो सकता है। ये ऐसा तप क्यों करते हैं? ऐसा तप क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसके माध्यम से भी आहार के प्रति जो इच्छा रहती है उस इच्छा का निरोध होता है। इच्छा निरोधो तपः। वृत्ति परिसंख्यान के माध्यम से भी इच्छा का निरोध हो सकता है, ऊनोदर के माध्यम से भी इच्छा का निरोध हो सकता है, और उपवास के माध्यम से भी इच्छा का निरोध हो सकता है। पर ये सोचें आप, उपवास करने से अच्छी तरह से इच्छा का निरोध होता है या ऊनोदर करने से? कम खाने से इच्छा का निरोध अच्छी तरह से होता है या उपवास करने से? उपवास करने से, आप कहते हैं उपवास करने से अच्छी तरह से इच्छा का निरोध होता है, लेकिन भगवान ने कहा ये बात नहीं है। ऊनोदर करने में इच्छा का निरोध बहुत अच्छी तरह से होता है, इससे ज़्यादा इच्छा का निरोध वृत्ति परिसंख्यान में होता है, इससे ज़्यादा इच्छा का निरोध रस परित्याग में होता है। उत्तरोत्तर इच्छा का निरोध अधिक होने से इस तपस्या में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ये पूर्वापर एक दूसरे के जो तप हैं, उत्तरोत्तर तप कठिन होते हैं और पूर्व पूर्व के तप बहुत सरल माने जाते हैं। उपवास करना सरल है, सबसे सरल कोई तप है तो उपवास करना सबसे सरलतम तप है। इससे कठिन है कम भोजन करना। महाराज ये कैसे? कम भोजन करना उपवास से कठिन है क्या? ये तो कोई भी कर सकते हैं। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, ये बिरला ही व्यक्ति कर पाता है। कैसा? इच्छा तो है भोजन करने का, भोजन करने की इच्छा है और इच्छा पूर्वक ही भोजन करने के लिए बैठे हैं। जब इच्छा उत्पन्न हुई है तो उस इच्छा का प्रतिक्षण निरोध करना, प्रति समय निरोध करना, ये संकल्प लेकर के भोजन किया जाता है, मैं आज एक ही ग्रास भोजन करके भोजन को त्याग करूंगा। तो आप किसी को कह करके तो चले नहीं जाते, कह करके तो बैठते नहीं कि हमको आज ऊनोदर करना है। कह करके आप बैठे नहीं और सीधा जाकर के रसोई घर में पाटे लगाकर आप बैठ जाते हैं, तो उधर से सारे व्यंजनों को लगा करके थाली आ जाती है। उस थाली को देख करके इच्छा निरोध करना आवश्यक है। भोजन को देख करके भी भोजन के प्रति इच्छा नहीं होना, ये उत्कृष्ट तप है। अब उसमें से आपको कितना ग्रहण करना है, आप पूर्व से ही संकल्पित हैं। मुझे तो केवल एक ग्रास ही लेना है, क्या लेना है ये आपको पहले से ही निश्चित भी होता है, आपका पहले से निश्चित भी होता है, या बाद में भी निश्चित कर लें। तो एक ग्रास के प्रति आप संकल्पित हैं, तो एक ग्रास लेकर के भोजन बंद करेंगे, तो वहां पर भरा हुआ थाली किनारे पर रखकर जितना चाहिए आप निकाल लेते हैं, एक ग्रास ले लेते हैं और भोजन बंद कर देते हैं। एक ग्रास अन्न ले लिया और एक ग्रास पानी ले लिया, भोजन को समाप्त कर दिया, तो यह ऊनोदर तप हुआ। ये ऊनोदर तप अनशन तप से भी श्रेष्ठ माना गया है, और ऊनोदर से भी श्रेष्ठ तप माना गया है कौन सा? रस परित्याग। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान तृतीय नंबर में है, ये उस उन दोनों से श्रेष्ठ है। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब कोई नियम लेकर के, अभी जो समझा रही थी वही नियम लेकर के करना। मैं ऐसी इस प्रकार की वस्तु अगर थाली में रहेगी तो भोजन करूंगा, नहीं रहेगी तो भोजन नहीं करूंगा। तो वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, होती है तो उसमें से भी एक ग्रास ग्रहण करूंगा, तो ये ऊनोदर तप हुआ। और वह वस्तु थी तो एक ही ग्रास कर लिया, ये ऊनोदर तप हुआ, और वस्तु थी इसलिए आहार ग्रहण किया, तो ये वृत्ति परिसंख्यान हुआ। और उसमें भी रस परित्याग तप को भी एक साथ आप कर सकते हैं, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये तीनों तपों को एक साथ कर सकते हैं। क्या किया? हमको सभी रसों को ग्रहण नहीं करना है, उसमें भी जो उपलब्ध है उसमें से एक रस को ही ग्रहण करना है, शेष रसों का त्याग। तो उस दिन उपवास होगा, परंतु वह उपवास तप तो हुआ ही, परंतु उससे पूर्व वृत्ति परिसंख्यान तप भी हो गया, डबल हो गया। वृत्ति परिसंख्यान में अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं रहा और वह वस्तु नहीं रही, तो भोजन आप त्याग देंगे, तो भोजन त्यागने के पश्चात उपवास तो हुआ ही, उपवास तो हुआ ही, लेकिन वृत्ति परिसंख्यान तप उससे पूर्व हुआ, इससे भी कर्म की निर्जरा हुई। उपवास जो हुआ उससे ज्यादा कर्म की निर्जरा वृत्ति परिसंख्यान से हो गई, क्योंकि वृत्ति परिसंख्यान यह अंतराय कर्म के परीक्षण के लिए रहा, और होगा या नहीं होगा ये पूर्व से कोई निश्चित नहीं था। वहां जाने के पश्चात वह वस्तु नहीं मिली तो उपवास का नंबर आया, वस्तु मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ये वृत्ति परिसंख्यान तप यह उत्कृष्ट माना जाता है उपवास से। तो ये तप कर्म की निर्जरा के लिए किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इच्छा के निरोध के लिए। और इच्छा का निरोध हुआ तो कर्म की निर्जरा तो स्वाभाविक रूप से हो जाती है। ऊनोदर यानि अल्प खाना, वृत्ति परिसंख्यान यानि खाने के लिए तो जा रहे हैं, ऐसी ऐसी वस्तु यदि मिली तो भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं मिली तो उस दिन भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। इसको कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान का तप ये है कि वस्तु पर डिपेंड है। जैसे कि थाली लगा करके लाया जाता है तो थाली आने के उपरांत उस थाली में गुड़ रहेगा तो भोजन करेंगे, गुड़ नहीं दिखेगा तो भोजन त्यागेंगे। ऐसा कोई भी वस्तु का संकल्प हो सकता है, केवल गुड़ ही नहीं, सभी वस्तु में से किसी भी एक वस्तु का संकल्प होता है। ऐसा ऐसा रहेगा तो आहार ग्रहण करेंगे। ये वृत्ति परिसंख्यान तप बहुत प्रकार से किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े मुनियों ने तप किया है पूर्व काल में, वो आहार के लिए मुनियों ने किया है। ये गृहस्थ भी कर सकता है अपनी शक्ति के अनुसार, पर मुख्य रूप से मुनि भी करते हैं। मुनियों ने कैसे किया है देखो, बैल के सींग में यदि गुड़ लगा हुआ दिखा तो आज का भोजन ग्रहण होगा, नहीं तो ग्रहण नहीं होगा। अब ये कहाँ से होगा योग? लेकिन ऐसा भी योग बन सकता है और भोजन प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए अंतराय कर्म का इतना तीव्र क्षयोपशम चाहिए। तो ऐसा क्षयोपशम हो तो मिलेगा, नहीं तो योग नहीं मिलेगा। और मिला, ऐसा मिला वो, कभी कभी मिलता भी है और कभी कभी नहीं मिलता है। और यह वृत्ति परिसंख्यान इतना कठिन होता है जो जब तक ऐसा नहीं मिलेगा तब तक भोजन ही हम नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसा भी यदि संकल्प लेते हैं, वो यम के रूप में अगर होता है तो भोजन ग्रहण करेंगे ही नहीं हो जब तक ऐसा नहीं मिलेगा योग। नियम पूर्वक होता हो तो बात अलग है, एक दिन के लिए ले लिया तो उस दिन उपवास हो सकता है, मिला तो आहार मिल भी सकता है। दो दिन का अगर लेते हैं, तीन दिन का, चार दिन का लेते हैं तो चार दिन तक आपके लिए छूट है, चार दिन के पश्चात फिर वृत्ति परिसंख्यान तप का कोई संकल्प नहीं रहता। चार दिन ऐसा योग नहीं मिला तो चार दिन तक भोजन नहीं करेंगे, चार दिन के भीतर मिला तो चार दिन के भीतर आपका भोजन होगा। इस प्रकार वृत्ति परिसंख्यान तप इच्छा के निरोध के लिए बहुत अटपट सा होता है, बहुत कठिन होता है। कठिन होता है इसलिए इस कठिनाई के कारण अनशन से भी ज्यादा कर्म की निर्जरा वृत्ति परिसंख्यान में है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। ये वस्तु संकल्प, वस्तु मर्यादा, वस्तु को मर्यादित करके चार रहेंगे तो दो लेऊंगा, छह रहेंगे तो तीन लेऊंगा, या दस रहेंगे तो एक ही लेऊंगा, इस प्रकार वस्तुओं की मर्यादा को लेकर के अगर आप भोजन करते हैं तो ये ऊनोदर नहीं, ये वस्तुओं का त्याग हुआ। रस परित्याग अलग है, वस्तु परित्याग अलग है। रस छह प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रस छह होते हैं? दूध, दही और घी, ये तीन, दूध, दही और घी, ये तीन रस अलग अलग हैं। गुड़, तेल और मिर्च, खारा है? हरी नहीं, हरी हरी यार नहीं है, हाँ नमक, नमक दूध, ये गुड़, नमक और तेल, गुड़ नमक और तेल, दूध दही और घी, ये 6 प्रकार के रस हैं। इन रसों को त्याग करते समय अगर घी का त्याग हुआ तो केवल घी का ही त्याग होता है, दूध का और दही का त्याग नहीं होता। दही का अगर त्याग हुआ तो दही का ही त्याग होता है, घी का और दूध का त्याग नहीं होता। दूध का अगर त्याग हो गया तो दूध का ही त्याग होता है, दही का और घी का नहीं होता, क्योंकि ये भिन्न भिन्न अलग अलग रस हैं। जिसका त्याग हम करेंगे उसी का त्याग होता है, जिसका नहीं करते हैं उसका नहीं होता। अब इसमें यदि आप ऐसा संकल्प लेते हैं